Today I want to discuss with you an overview of Ishopanishad, but I believe last few weeks Acharya Suvinandaji, my colleague, has covered Ishopanishad in his Sunday Pravachans. So I thought an overview will be very timely. Ishopanishad basically is 40th chapter, the last chapter of Yajurveda. Typically, it's not easily readable there. If you look at the back wall, the four Vedas are mentioned. From the right side, it is Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Athar Veda. That is the way we usually list the four Vedas. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Athar Veda. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Athar Veda. But there is another way to look at these four Vedas. There is a Veda mantra in what is called Purush Sukta. Purush Sukta in Rig Veda. That also appears in Yajur Veda as Purush Adhyaya, 31st chapter. So the seventh mantra looks like Om Tasmat Yajyat Sarvuta Richa Samani Jajye Chandansi Jajye Tasmat Yajus Tasmat Ajayata. What it basically gives is, it gives the order of the four Vedas in a slightly different manner, namely Rig Veda, Sam Veda, Athar Veda and Yajur Veda. So here, just want to bring it to your notice that there is another way to list the four Vedas, namely Rig Veda, Sam Veda, Athar Veda and Yajur Veda. Not going into detail why it is in this order, but this is the original order. The point here is to make that Yajur Veda is at the fourth year. And as I said, Ishopanishad is 40th chapter, which is the last chapter of Yajur Veda. So basically that makes Ishopanishad coming out of the last chapter, last part of all the Vedas. That is a significant thing in the sense, because if there is any book or anything, the last part is its samaya. The point to be highlighted here is that Ishopanishad, which is the last chapter of Yajur Veda, is actually the samaya of the whole Vedic message. That's why it is very important. It has the first name in Upanishads. Upanishads are listed in 11 principal Upanishads, as Ishopanishad, Ken, Kat, Prashna, Mundak, Mandukya. So many names are there, 11 names, but Ishopanishad is always first, which is nothing but 40th chapter of Yajur Veda, with slight change in order, and one mantra has become broken into two parts, so it has 18 mantras. The point we want to understand is Ishopanishad is essentially the last chapter of Yajur Veda, and not only last chapter of Yajur Veda, but also very last conclusive part of the Vedas. That's why it presents a very gist of the Vedas, and if somebody has understood it very well, this can be very important in his life. Indeed, one German philosopher, Schopenhauer, he has said, because you see, if you have these 17 mantras, which is 34 lines, it will come in one page, one sheet of paper. So what did Schopenhauer say? He said that if somehow in some sort of event, if the entire earth is gone, if we lose all the libraries, everything, but if this one sheet of paper survives, this is enough to guide the humanity. So this is the importance of Yajurveda 40th chapter. So I wanted to discuss very quickly in this next 30-40 minutes. Unfortunately, these connections it's not somehow showing up here. The own slides were coming up, but I am sure my friends will be able to project it soon from their laptop at that end. And I have sent to them by email. So one slide I have as a kind of overview. It is in a tabulated form, but no problem. I can still explain the concept behind it. As a conscious human being, we are body, mind and soul. Everybody knows it nowadays. Even the common man uses this term. We are a composite of body, mind and soul. That soul is our consciousness. That is a non-material thing, but it doesn't, it has very extraordinary powers. It has power to know, and power to act, and power to experience. What we call jnana, karma and bhog. That is the essential inherent attribute of my atma. This has three extraordinary powers: ability to know, ability to act, and in the process we go through an experience. There, in Sanskrit terms, it is called jnana, karma and bhog. Jnana, karma and bhog. But that tiny consciousness, my atma, that is somewhere here, it cannot do by itself. It exercises these three powers with the instruments of body and mind. So of course, when I am in this pact, in this form, in this body and mind, that as a conscious being, I get to know many things, I feel many things, my emotions, and I think and decide, and then I act upon my surroundings. So this is called a jnana, karma and bhog. Essentially, I am the knower, experiencer, as well as the action, the doer of all that my instruments are doing. So these are three dimensions of our life: jnana, karma and bhog. And of course, the bhog has a wide spectrum: sukha and dukkha, pleasure and pain. And our normal tendency is to get away from what is painful. We want to be away from dukkha. And if possible, we want to go towards sukha. So that is true with us and all animals, birds, all other conscious species who experience all this. So that is the basic purpose of life. But human beings are uniquely different from all other species, that we can sit like this, discuss many things, and improve our quality of life, which is quite an open-ended process. It can go to the highest limit, and that's how we are different from animals and birds. An animal cannot visualize to improve its quality of life beyond certain saturated state. So if I were to show you in a tabular form, in jnana, we have something, correct knowledge as well as incorrect knowledge. In karma, some of our actions are good and sometimes it is bad. So we have the words like punya and paap. And knowledge-wise also, kabhi hum sahi hain, kabhi galat hain. So our knowledge is correct as well as incorrect. And in bhog also, as I said, we have wide spectrum, sukh and dukh, is it not? So jnana, karma and bhog, in all the three dimensions, we have a spectrum of positive as well as negative. But as a human being, particularly as we sit in the Ayasama Satsang, we try to understand another, that supreme consciousness, infinite consciousness of Ishwar, and that we tell that he also has these three kinds of powers, jnan, karma and bhog, but in his case there is no duality, and qualitatively it is always positive side, and quantitatively it is always saturated infinite side. For example, his knowledge is all correct knowledge, and he is all-knowing. We say he is omniscient. So he is all correct knowledge, and actually based on his knowledge only he makes the world for us to live in. Of course, from this we try to pick up a few tidbits of knowledge, some incorrectly, some correctly. His karma is also of very high quality. For his karma, we say, he is always, like this bhajan we recited, yajna roop prabho hamare. So his karma is always nishkam karma, what is called yajna karma. He doesn't do anything for his own good. It is for benefit of others. And his bhog is also very unusual. He doesn't go through any fluctuation. He is always in that what we call Ananda Swarup. He is named as Sachidananda Swarup. So we also have those three powers, ability to know, experience and act. Similarly, Ishwar also has it, but his powers are qualitatively always positive and quantitatively always infinite. But that is what the charm of life is. As a human being, we try to ask ourselves, how can I improve my quality of life? In knowledge, in action and in experience, jnan, karma and bhog. Of course, we all go through a lot of elaborate process of education. That's why even Sunday morning we assemble here. But we know it. We can never be equal to Ishwar. We can never be. But we try to grasp as much as we can. Action-wise also, we know it. Our actions are always very finite, sometimes good, sometimes bad, and we try to do good as much as possible, and we know it in our society. Good people are those who do good actions. They are called as devatas. Average people is called as manushya, and then unfortunately there are some bad people who give pain to others. They are called as rakshas. So in the direction of actions also we have a wide spectrum, but we try as much as possible. That's what the Vedic message is, manur bhava janaya devyam janam. Try to be at least as a human being, average human being, but if possible rise above to devatva. And this is his design, that the day I become a mother or father in my home, I become a devata, matya devabha, pitya devabha. So every man may not be a devata, every woman may not be a devata, but every mother is a devata, every father is a devata for his or her particular child. So that is his design, that he is wanting us to become better and better in action also. And now coming to bhog, there is a dimension. This is where we can become exactly like him for a small time duration. That is what is the importance of upasana, what we call meditation. If your meditation is successful, when you are in blank mind, like when you are in sushupti, deep dreamless sleep. Once in a while we wake up from deep dreamless sleep, and then you have no recollection, isn't it? Day-to-day sleep, you wake up, you have some recollection of a dream. Sometimes very hazy, sometimes you can recollect exactly. But this is not very good quality sleep. Your mind was not fully restful, is it not? Something was happening in your mind. But once in a while, when you have good luck, you get a very good, deep, dreamless sleep. In our philosophy, we have given it a name, sushupti. When you say, I slept very well. And when you emerge out of that sushupti, you have as if you feel you are out of the world. there was nothing, blank mind. And that makes you very fresh, is it not? So, in our sitting posture, if I can bring my mind to that state, when mind is blank as if it is in deep, dreamless sleep, then I am in upasana, when nothing is happening. That sense of nothingness is very important. Then nothing is happening in your mind, it means you are disconnected from your mind. And if you are disconnected from your mind, you are connected to Him, is it not? Because He is sarva-vyapak, He is there in that cave also where you live, is it not? So meditation is dhyan. This is not dhyan, what is called as kripya dhyan dijiye, attention or concentration. That's why we translate it as meditation. Dhyanam nirvishayam mana, when mind is blank, then you are in dhyan. And then you are, next step is you are connected to Him. Aap Prabhu ki god mein hai, then it is upasana. Many people misunderstand upasana as if reciting a mantra is upasana, reciting a bhajan is upasana, Prabhu ka gunagan is upasana. No. That is to motivate you to go to upasana. You can do that 24 hours, but that is not upasana. That motivates you to go to upasana. Finally, those 10-15 minutes you are in upasana when your mind is doing nothing. If you have some thoughts, if something is happening, even if you are reciting Gayatri Mantra, or even if you are thinking about deep meaning of Gayatri Mantra, you are not in upasana. Is it not? No misunderstanding. Upasana clearly means like you are in Sushupti, deep, dreamless sleep, but you are not sleeping. You are in the sitting posture. You are alert. You are conscious. In Sushupti, you are unconscious, but in Upasana, you are conscious, but there is nothing in your mind. So we were talking about, I thought we were all very smart here. Things were very well equipped. Somehow I got a bad luck. But now I want to go to what I wanted to discuss. Ishopanishad. Unfortunately, I cannot show you those mantras. But let's go quickly. This is the best I can do. I will recite some mantras, which many of you have been regular attendees here, so you will have a glimpse of it, you will know it, because this has been covered in last 3 to 4 months. But I'm trying to give you a perspective of Ishopanishad, which is the gist of the Vedic message. From the perspective of Jnana Karma and Upasana, so that you can improve your day-to-day life and feel that improvement in quality of life. Let's go through the first mantra. Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat. Tena tyaktena bhunjitha ma gedhah kasya swiddhanam. We'll not go into details of these meanings. This is all have been covered. But we are discussing it from the point that how can I understand what is this knowledge, action and experience. Knowledge, action and upasana. Because as I said, in knowledge I can never be like Him. In action I can never be like Ishwar. But in upasana I can be in Him and I can taste that anand, which is different from the sukh and dukh. So this is the only dimension in bhog. For a few moments in a day, I can be with Him. Upasana literally means up and asan. Up yani sameep, asan yani baitna, uski god mein baitna. Upasana always means Ishwar upasana. Aishmaj ka dusre niyam mein usi ki upasana karni yogya hai. To Him only we should sit with, to be with Him. So, from that point of view, I will quickly go through these 17 mantras. They are very beautiful and tell you how they give you a mechanism. the mechanics of human life, where you can optimize your life in the three dimensions of jnana, karma and upasana, knowledge, action and upasana. Upasana, there is no English word. Unfortunately, somehow it has been translated as worship and that has killed its meaning. So the only way to describe its meaning correctly is, it is literally to be with Him. So first mantra is Ishavasyamidam. This is very well known. This is in the direction of knowledge. I am being told that there is an entity, namely Ish, Ishwar, that is permeating through all the particles of the universe. He is omnipresent everywhere there. Uska is jagat ke kan kan mein vas hai. Jagatyam jagat. Ten tyaktein bhunjitha. And the beauty of this Ishopanishad is, they are always a dipole. There is a pair of two words. They seemingly have different meanings, but we have to take them along together. Here those two words are tyag and bhog. What it's saying is, maine tumko sansar mein bheja, iska bhog karo, lekin as a detached manner, mujhe mat bhool jao. Just like a parent will tell a child, you go to university, we will take care of your tuition, living expense, but I give you a mobile phone, please call us once in a while, at least in the weekend. Stay connected with us. So that's what that Ishwar is telling us, that I am not far away from you. Enjoy the world, but don't forget me and stay connected with me. Then the next two mantras, Kovanyave karmani jiji visheshatam sama, is in the direction of action, that in this world you should be leading an active life for 100 years. Evam tvayi na anyathe tu asti. You have no other possibility, that you have to be only an active person. What that tries to say, even if I am sitting idle for 5 minutes, actually I am not sitting for idle. I am doing inaction, is it not? And for every action, whether it is inaction or bad action or good action, I will be rewarded. There is no law of knowledge. Jnan ka koi phal nahi milta, lekin karmo ka phal milta hai. To karm ke phal se sukh aur dukh hote hain. So all this Vedic philosophy is summarized very beautifully in few words. So what he is saying is, I have sent you, as said, usne maya naam ek diya naya, na karm lipyate naya. Is sansar mein rehna, lekin raman mat karna. Usne mujhe kya naam diya naya, main tumhe is sansar mein bhej raha hoon, aur isme itna mat ram jana ki mujhe bhool jana. So, and remember, every moment you have to do something with the assets of body and mind. If you choose not to use them, still that is your problem and you will be rewarded accordingly. Whether what you have done nothing, you have done something good, or you have done something bad. So, puri philosophy of karma isme hai. Tisra mantra hai, asuya naam te loka andhen. To isme unhone keh diya, ki karmo ka phal milta hai, aur aise milta hai, ये इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में मिलेगा. असुया नाम ते लोका पेत्यापि. पेत्य बोलते हैं डेड बॉडी को. जब तुम डेड हो जाओगे फिर अगला बर्थ होगा, उस समय साया हिसाब चुकता हो जाएगा. सो दैट लेजर वी आर फीलिंग ऑलवेज एवरी मोमेंट वेन एवर आई डू एनीथिंग. एज आई सेड, इवन इफ आई डू नथिंग, दैट इज ऑल्सो फीलिंग माई लेजर, बिकॉज आई वेस्टेड माई फाइव मिनट्स. इज इट इट. So second and third mantra is in the direction of action and law of karma. Then comes the fourth and fifth. Aneja dekam manaso javiyo taddhavato anyanatyeti tishthato. So once in a while I will point out that pair. Here the pair is dhavato and tishthato. Jindagi ki daur dhoop mein daurna is dhavat yani daurna. Tishthat yani baith jana. तो अब परमात्मा बोल रहा है, ज्ञान और कर्म का सिलसिला चलता रहेगा, जिंदगी की दौड़ धूप चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठना भी आवश्यक है, जिसमें योर बॉडी एंड माइंड आर क्वाइट डूइंग नथिंग, तब तुम मुझसे जुड़ सकोगे। इफ यू आर डूइंग समथिंग विद योर बॉडी एंड माइंड तो उपासना नहीं होती। तो अब यहां चौथे और पांचवें मंत्र में उपासना का भेद बताया कि बॉडी माइंड से दौड़ धूप चलती रहती है, लेकिन आप दिन भर 24 घंटे हैं, 23 घंटे उसमें लगा दो, थोड़े से मिनट हैं, बैठ जाना, तिष्ठति तस्मिन नपो मातेश्वा ददा। फिर उन्होंने कहा जब बैठ जाओगे तो इधर उधर नहीं देखना है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत, मैं दूर में तो हूं पर हां तुम्हारे बहुत अंदर भी हूं। तो बैठकर दूर मत देखना, अपने बहुत अंदर देखना। तो हमारी फिलॉसफी में हम कहते हैं, उपनिषद में बड़ा स्पष्ट है कि वो एक जगह आप उससे मिल सकते हैं। आप ये मत समझिएगा आय समाज उससे मिलने हम जाते हैं, आप केवल एक जगह मिल सकते हैं, इस खोपड़ी के अंदर एक छोटी सी गुफा है जहां आपका आत्मा बैठा है, केवल उस गुफा में ही आप उससे मिल सकते हैं, है ना। उस गुफा में हम क्यों नहीं मिलते, क्योंकि मैं हमेशा अपने मन से जुड़ा रहता हूं। तो मन को शांत किया, उससे अलग हुआ, तब आप उसकी गोद में बैठेंगे। तो ये मंत्र पांचवें मंत्र में उसने कहा तदे जति तन्ने जति तद दूए तदवंतिके, वह बहुत दूर भी तो है लेकिन दूर जाके उसको नहीं मिलेगा, वो वहां पर मिलेगा। तो ये बात तदंत सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। देखिए पांच मंत्रों में ज्ञान कर्म और उपासना का काफी कुछ समझा दिया है। अब देखिए छठे सातवें मंत्र में अब बता रहे हैं कि आप उपासना में थोड़ा ऊपर पढ़ गए, थोड़ा हुआ तो आपके जीवन में क्या अंतर आएगा। अब दो मंत्र हैं छठा सातवां, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अनुपश्यति। देखिए हम सब पशु हैं, वेद की भाषा में बोलते हैं पांच पशु हैं, तो मनुष्य भी पशु कहलाता है, पश्यति थी पशु, जो आंखों से देखते हैं उनको पशु बोलते हैं, है ना। तो मनुष्य भी पशु है। तो अभी तक के पांच मंत्र थे कि जैसे जानवर भी देखते हैं, अपने आंख कान से सुनते हैं, हम भी वैसा ही करते हैं, और हम भी वैसा ही जीवन जीविता के वापस जा सकते हैं, फिर आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे। पर ये जो चीजें हैं ये थोड़ी हमें समझ में आ जाए तो उससे क्या होता है। तो यहां एक बड़ा सुंदर मंत्र है, शब्द आया अनुपश्यति। अब ये पश्यति से अलग हो गया, गहराई में देखना, जैसे एक साइंटिस्ट भी देखा, न्यूटन ने भी देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिर गया, सबने देखा है, सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, पर उसने थोड़ा सोचकर एक अनुपश्यति की दृष्टि से देखा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल है, पृथ्वी अपनी तरफ सब चीज को खींचती है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट और फिलोसफर गहराई में देखते हैं, तो गहराई में अपने अंदर जाकर देखने को बोलते हैं अनुपश्यति। पश्यति से क्या होता है, आप जानते हैं, जानता। इसका अगला मंत्र में देखिए आएगा यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मदेव अभी विजानत। अब क्या आ गया, जानते नहीं आया, अब आया विजानत। तो हमारे वेद की भाषा में ज्ञान है, अभी ज्ञान से ही मैंने कहानी शुरू की थी, ज्ञान है जो हमें ज्ञानेन्द्रियों से मिलता है, नॉलेज है जो पशु पक्षी को भी मिलता है, और जब हमें कुछ विशेष ज्ञान मिलता है अंदर उससे मिलता है उसको विज्ञान बोलते हैं। वेद की भाषा में विज्ञान का मतलब साइंस नहीं होता है, भारत में विज्ञान आप बोलेंगे इसका मतलब है साइंस है, पर यहां वेद उपनिषद दर्शनों में विज्ञान शब्द आएगा तो विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जो ज्ञानेन्द्रियों से मिला, वो मुझे जो ब्रह्म उपासना में चला गया तो प्रभु ने जो फ्लैश दिया वो है विज्ञान, इसको संप्रज्ञात योग की समाधि बोलते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज। तो वो जो नॉलेज आता है उसको बोलते हैं विज्ञान। तो उपासक को ज्ञान उसका निखार जाता है, उसको कुछ नई बातें पता चलती हैं जो किताबों में नहीं है, जो अंदर से उसे पता चलता है वो विज्ञान। अब वो उसने क्या जाना, ये बताया क्या कि सभी लोगों में ये अंदर, अब उसकी भावना उसकी अलग हो जाती है, इसका मैंने टाइटल दिया है लव एंड डिटैचमेंट। अब उसको अपने हृदय में सब प्राणी दिखते हैं और सब प्राणियों के हृदय में उसको अपना दिखता है ना। सर्वभूतेषु च आत्मानम् ततो न विचिक्त सतति तत्त्व को मोह कह शोक। अब उसे जो फ्लक्चुएशन होते हैं मोह और शोक के, कोई चीज पाने की इच्छा और किसी चीज के बिछुड़ जाने पर जो शोक है दुख है, यह अब उसे नहीं होता। बिल्कुल राइट सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो सॉरी बट फाइनली वी हैव कॉट अप। ये दो स्लाइड में आपके सामने हैं, अब आप मंत्रों को थोड़ा देख सकेंगे। मैं कर्सर भी ले जाऊंगा, मैंने अनुपस्थिति की बात की थी वो यहां पर, क्या मेरा कर्सर नहीं चलेगा क्योंकि ये वहां से आ रही हैं। तो अनुपस्थिति आप देखेंगे पहली पंक्ति में अंत में है, जो देवनागरी नहीं पढ़ सकते हैं, दे विल लुक एट इट इन द रोमन फॉर्म एंड विजानता, मैंने जो बोला जो दूसरे मंत्र के फर्स्ट लाइन के अंत में है विजान। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं, मुझे 5-10 मिनट में सही कहानी समाप्त करनी है, बहुत सारा समय हमारा थोड़ा लॉजिस्टिक में चला गया। पर ये छठा सातवां मंत्र है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। ये अभी आया है, आप ज्ञान कर्म उपासना में थोड़ा आप आगे बढ़ गए हैं, पहले भी आप चीजों को देखते थे पर अब आपका देखने का ढंग बदल गया है, अब आपकी फीलिंग बदल गई है, अब आपका सोचने का ढंग बदल गया है, अब आप एक सामान्य मनुष्य नहीं है, आप एक लेयर ऊपर हो गए। अब एक लेयर ऊपर होने के बाद आगे की जो यात्रा है, अब उसका वर्णन आप देखिए। आगे 9 मंत्र और हैं, मैंने उनको तीन तीन के तीन समूह में बनाया है, तो तीन ही स्लाइड और हैं, पर गहराई बहुत ज्यादा है तो हम देखेंगे। नहीं, एक मंत्र और है, उसका अलग ही मजा है। ये अब आया है, अब उस उपासक को जो मैं कहूं अभी अर्ध उपासक है, आधा उपासक है, अब वो आधे उपासक को लग रहा है कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया, अन्न जल वायु तो पशुओं को भी दिया, माता पिता दिए, ये सब तो सबको दिया, अब उसके अंदर कुछ विशेष प्रतिभा आ गई है, तो अब वो ऐसा वर्णन। इसमें भी वो ड्यूअलिटी है जो मैं बता रहा था, डाइपोल है, पर एक गजब का है। पहली लाइन में वो गुण है जो परमात्मा के, तो परमात्मा को हमेशा वेद में आता है स, स यानी वह, दिस इज ए प्रोनाउन लाइक ही एंड शी, है ना। स पयगार शुक्रम अकायम अव्यणम अस्नावयम शुद्धम अपाप विद्धम, तो ये इतने सारे गुण बताए, ये सब परमात्मा के हैं। उपासक कह रहा है मैं ऐसा तो नहीं हूं, लेकिन फिर उपासक को बताया ईश्वर कि देखो बहुत सारे गुण ऐसे हैं, तुम मेरे पास तो आ ही गए हो, काफी पास आ गए हो, मैंने अपने बहुत सारे गुण तुम्हें भी दे दिए। तो सेकंड लाइन में अब वो गुण बताए गिने गए हैं, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यतो अर्थान व्यवधान अशास्त्रीभ्य समाभ्य, तो ये बहुत सारे गुण अब उसमें भी लगता है कि हाँ कवि हूं, यानी मैं भी अब परमात्मा का गुणगान कर सकता हूं, मनीषी तो हो ही गया, मैं अपने मन के ऊपर काफी अधिकार हो गया है, स्वामी हो गया हूं, इत्यादि इत्यादि। आइए अब हम अगले 9 मंत्रों को देखते हैं। ये दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्म, तो अब तीन तीन का तीन तिगड्डे आने वाले हैं, ये कर्म के हैं, बाद में ज्ञान का आएगा, बाद में उपासना की पराकाष्ठा आएगी कि एक मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है। अभी ये आधा उपासक हो गया, अब इसके सब कर्म अच्छे हैं, ये गलत कर्म का तो सवाल ही नहीं उठता, इसका सब पुण्य कर्म अच्छे कर्म करता है, ये उसका प्रतिनिधि है, ये व्यक्ति अब ईश्वर का प्रतिनिधि है संसार में, इसके सब कर्म अच्छे हैं, लेकिन अभी भी इसके पास एक द्विधा है, ही इज इन अ डायलेमा, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ एंड हाउ मच फॉर अदर्स, है ना, मैं दूसरों के लिए कितना काम करूं, एकदम दूसरों के लिए ही काम करता जाऊं, अपना ध्यान नहीं रखूं तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो अब इसको बैलेंस की शिक्षा दी जा रही है। तो यहां दो शब्द आए हैं, संभूति और असंभूति, संभूति यानी समाज के लिए काम करना, असंभूति यानी व्यष्टि अपने इंडिविजुअल के लिए काम करना। तो इसमें लंबी कहानी है, वो मैं ज्यादा नहीं जाता, इसमें बस कहा कि यदि तुम अपने लिए ही काम करोगे तो अंधेरे में चले जाओगे,
यदि समाज के लिए काम करोगे, काम इसके सब अच्छे हैं, कुछ हम अकेले अपने लिए कहते हैं ना, खाना खाते हैं, बैठ कहते हैं, नहाना धोना, ये सब आवश्यक है और समाज के भले के लिए भी काम करते हैं। तो अभी इसका बैलेंस की शिक्षा दी गई है कि यदि तुम केवल अपने लिए काम करोगे तो गहरे कुएं में चले जाओगे, ये भाषा है यहां पर। यदि समाज के लिए ही काम करोगे तो और भी गहरे कुएं में चले जाओगे। तो इन्होंने क्या कहा, दोनों को बैलेंस बना के रखा। और जो अंतिम लाइन है, आप तीसरे मंत्र की दूसरी लाइन देखिए, विनाशेन मृत्युम तेत्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। अभी क्या किया, असंभूति का नाम ही उन्होंने बदल दिया, विनाश बोला। हम सबका नाश होना है एक दिन, हम परमानेंट नहीं है, पर आयुष्मान ह्यूस्टन चलता रहेगा, जहां संभूति है वो एटर्नल है, भारत देश चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी आए हैं, अभी चले भी जाएंगे एक दिन, पर भारत चलता रहेगा, है ना। तो संभूति का कभी विनाश नहीं होता, असंभूति का विनाश होता है। तो क्या कहा, विनाशेन मृत्युम तेत्वा, हम अपने लिए इसलिए काम करते हैं कि हमें मौत ना ले ले। यदि मैं नहाना धोना न करूं, खाना पीना छोड़ दूं, तो मौत आ जाएगी। तो यह एक साधन है, सो दैट आई स्टे अवे फ्रॉम डेथ, सो दैट आई वर्क फॉर द कम्युनिटी, फॉर द संभूति। तो यह बैलेंस की हमें शिक्षा दी गई है। और यही देखिएगा आप, अब अगले में है 12वां, 13वां, 14वां मंत्र, ये नॉलेज की दिशा में है। नॉलेज में भी डाइपोल है, क्योंकि ये जगत में जड़ पदार्थ भी हैं, इनर्ट मैटर भी है, और चेतन जगत भी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। तो ये चेतना क्या है, इसके लिए बोल दिया उन्होंने विद्या। और जो जड़ पदार्थ को जानने की साइंस है, मटेरियल साइंस के लिए बोला अविद्या, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए बोला अविद्या। ये आप कह लीजिए वो है पदार्थ विद्या, और विद्या हो गई अध्यात्म की विद्या। तो इसमें भी अब बैलेंस के लिए बताया। तो इसकी भी जो लास्ट लाइन है तीसरे मंत्र का अंतिम, अविद्या मृत्युम तेत्वा विद्या अमृतम अश्नु। मेटीरियल साइंस को इसलिए जानो कि मौत को धकेल सको। इफ यू डोंट नो एग्रीकल्चर, पैदावार नहीं होगी, किसान कुछ उपजाएंगे नहीं, लोगों का पेट नहीं भरेगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेज, तो ये टोर्नाडो ये सब क्या क्या आते हैं, आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। हरिकेन आ जाता है ह्यूस्टन में, तो आपको हाउ टू बिल्ड हाउसेज, हाउ टू ग्रो फूड, हाउ टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, ऑल दिस मटेरियल साइंस इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट आई कीप डेथ अवे फ्रॉम मी। बट देन दैट इज जस्ट द मीन्स, व्हाट इज द एंड, एंड इज विद्या अमृतम अश्नुते। आई वॉन्ट टू नो दैट स्पिरिचुअल ट्रूथ, सो दैट आई कैन बी अवे, आई कॉन्कर द डेथ फॉर एवर, तो मैं अमृत पालूंगा, इमोर्टैलिटी पालूंगा। आइए एक और स्लाइड है, इसमें बड़ा ही, जो उपासक यहां तक आ गया है अब उसको बता रहे हैं कि तुम अपने आप में भी दो चीज हो, एक तो आत्म तत्व है वायु अनिलम अम्यतम, और एक है तुम्हारा बॉडी विच इज भस्मांतम शरीर। ओम के तो स्मय, इस दो के साथ रह के उस परमात्मा को याद रखो जिसने तुम्हें भेजा है वो कुछ करने के, और इतना याद रखो जैसे कि तुम उसकी उंगली पकड़ के चलते हो। तुम्हारा जीवन कैसे हो जाए, अग्नि नए सुपथा आए, जैसे वो तुम्हारा गाइड है, जैसे एक बच्चा बाजार में मां की उंगली पकड़ के चल रहा है, उसको किसी चीज का डर नहीं है, उसको मालूम है मां की थैली में दूध है, सब कुछ है जो चीज चाहिए। जब तो ऐसा आपका जीवन हो जाए, आप जब उपासक हो जाते हो तो धीरे धीरे आप यहां तक पहुंच जाओगे कि जैसे आप हमेशा उसकी गोद में हो, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। फिर अंत में है, हिरण्मयेन पात्यन सत्यस्यापि हितं मुखम यो असौ आदित्य पुरुष सो असौ, जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। बहुत अच्छी गहरी भावना है, समय सीमित था और मैं थोड़ा समय इधर उधर चला गया। मैं अंत में ये लास्ट स्लाइड में बहुत छोटे में इसका उपसंहार कर रहा हूं, समराइजिंग इट। व्हाट इज द वैदिक मैसेज इज टू लिव इन द वर्ल्ड विद ए साइंटिफिक इंक्वायरी फॉर ऑल इवेंट्स, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सब चीज को जानो और समझो और उसके कारणों की खोज करो, ट्राई टू गेट टू द हिडन कॉज ऑफ एवरी इवेंट।
This beautiful art has an artist try to get to that point. That is the scientific inquiry. And as you do it, aap karma gives lives to, ye jo hum karma karte hain, isse sukh aur dukh ka jaal bichha jata hai, rise above it. As if you are his guide. जैसे एक छोटा बच्चा माँ ने कहा तुम ये करो मैं तुम्हें कैंडी दूंगी, अच्छी बात है कोई बात नहीं, पर एक बच्चा है कैंडी नहीं भी मिले माँ ने कहा इसलिए करूंगा. इस तरह का जब भाव एक व्यक्ति में आ जाए कि ये परमात्मा की इच्छा है, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, सुख और दुख से मुझे कोई मतलब नहीं, कर्मों का फल मिलता है ये साधारण लोगों के लिए है, आई एम हिज चाइल्ड, एवरी एक्शन ऑफ माइंड इज ऑन हिज बिहाफ, that will be such a high quality. And then, thodi der aap upasana mein lagaiye, some minutes every day to be with him, disconnect from mind. Jo hum yahan 10 minute shuru ka kehte hain, isko aap ye mat samjhiye saptah mein 10 minute ho gaya, isko ghar mein din mein do baar 10 15 20 minute, bas wo thode se kshan ho jab aapke andar kuch bhi nahi, jab bhi kuch aaye om keh ke usko bhagate jaiye, ant mein ek kshan aayega, मन में कुछ भी नहीं है, वो आपकी उपासना होगी, इससे आपको लाभ होगा. बहुत धन्यवाद.